शांति। तो हमारा आज का विषय है आजादी और आध्यात्मिकता। तो ये जो सीन था, ये कौन सा सीन था? आजादी का था। एक होती है, पहले दिन ही दीदी ने बताया ना, एक होती है स्वतंत्रता और एक होती है स्वच्छंदता। तो अभी जो सीन था उसको क्या नाम दें? जी नहीं, दो में से कोई एक नाम उठाओ कि ये स्वतंत्रता थी या स्वच्छंदता थी। तो स्वच्छंदता में नहीं रहना है, स्वतंत्रता में रहना है। पहले ही दिन बहुत अच्छे से इस शब्द का अर्थ क्लियर किया था दीदी ने, स्व के तंत्र में। और तंत्र माना ही कानून, संविधान, नियम, लॉ, प्रिंसिपल्स। तो भट्टी में आए हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। और जब आप आए, पहला दिन 15 अगस्त था, जो भारत की स्वतंत्रता का दिवस है। और कल जब आपके जाने का दिन है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का दिन है। तो एक तरफ देश की आजादी है जब आए थे, और जब जा रहे हैं कृष्ण की आजादी कारागार से। दोनों में आजादी की बातें हैं। तो जब हमने आज का टॉपिक रखा है कि आजादी और आध्यात्मिकता, चलो आजादी का स्वर्णिम महोत्सव के रूप में हमको बहुत सुंदर एक अवसर मिला, क्योंकि 2 साल तक तो कोरोना ने सेवाओं को थोड़ा सा मुकाम दे दिया था, ठहराव दे दिया था। और जैसे ही कोरोना पूरा होके सेवाओं करने के रास्ते खुले, तो सीधा मिल गया आजादी का महोत्सव। और उस नाम से बहुत कम कालखंड में ब्रह्मा कुमारी के द्वारा बहुत बहुत सेवाएं हुई है, जो गवर्नमेंट की तरफ से भी इतनी सेवाएं नहीं होंगी। वो बहुत कम कालखंड में ब्रह्मा कुमारी ने वो सेवाएं करके दिखाई। तो वहां तो जो आजादी हम मना रहे हैं महोत्सव, वो किससे आजादी है? वो जो देश मना रहा है, जो 15 अगस्त का दिन है, किससे आजादी? किसकी गुलामी थी? अंग्रेजों की गुलामी थी, और उससे हम आजाद हुए, उसकी हमें खुशी। इसका अर्थ है कि गुलामी किसी को पसंद नहीं है। तो ये तो अंग्रेजों की गुलामी थी, और हमने उसको उनके तंत्र से अपने आप को आजाद करने के लिए सारी कोशिशें की। और एक दिन वो भी आया, 15 अगस्त 1947, जब देश को आजाद देश कहा गया। और उस आजाद देश में चलने के लिए एक अपना ही तंत्र, एक संविधान बनाया गया, कि जिसको गणतंत्र दिवस के रूप में 26 जनवरी को वो दिवस मनाया जाता है। बात आती है आध्यात्मिकता की, कि जब कहा गणतंत्र, गण माना क्या? गण माना क्या? व्यक्ति है ना, जन गणना करते हैं ना, हा? तो गण माना व्यक्ति, या व्यक्तियों का समूह, तो गणतंत्र और व्यक्तियों के समूह कैसे चले उसके लिए तंत्र बनाया गया। लेकिन बाबा ने आकर कहा कि जिसको तुम गण कहते हो, जिसको तुम व्यक्ति कहते हो, जिसको तुम ह्यूमन बीइंग कहते हो, उसमें दो हिस्से हैं, एक ह्यूमन और एक बीइंग। बीइंग है तो ह्यूमन चल रहा है, ह्यूमन माना शरीर और बीइंग माना आत्मा। तो जब अज्ञानता थी, ये सब कुछ पता नहीं था, तो बाहर वालों की जो हमको अधीन करके रखा था, तो हमने कहा कि हमें उनसे ही अपने आप को अधीनता से, उनकी अधीनता से छुड़ाना है, आजाद होना है। लेकिन अब जब हमें ज्ञान मिल गया है, तो ज्ञान मिलने के बाद हमें क्या पता चला कि मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और इस आत्मा को किसने अधीन बना दिया है, किसने अधीन बना के रखा है? माया रावण ने। तब कहा आजादी और आध्यात्मिकता। उस रूप से तो हमने आजादी प्राप्त कर ली, फिर भी कई बार लोग कहते हैं कि अंग्रेजों को भल हमने यहां से क्विट इंडिया करके अपनी धरती को उनसे खाली कर दिया, बेशक, पर उनकी ही बोली चल रही है अभी तक, उनकी ही दवाइयों का इस्तेमाल, उनकी ही एलोपैथी चल रही है, बहुत सारे। तो हम सही अर्थों में अभी भी स्वतंत्र नहीं है। और पहले जिस प्रकार की गुलामी के दौर से गुजरना पड़ता था, आजकल उस गुलामी का तो दौर कभी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि अब नई टेक्नोलॉजीज आ गई है। इसीलिए कोरोना काल में भी क्या कहा गया, क्या कहा गया, ये भी एक तरीके का, ये कोरोना क्या बहाना है मानवता को अधीन बनाने का। कहा गया था ना इसे कि अब ऐसे जैसे पहले राज करके गए थे, बंधुआ मजदूर बना दिया था, गुलाम बना के रखा था, उस प्रकार से अब हमारे पर वो राज नहीं कर सकते, पर अब दूसरे तरीके से राज किया अभी भी उन्होंने कोरोना के नाम पर। तो कहने का तात्पर्य, जब तक हम भीतर की स्वतंत्रता सच्ची नहीं प्राप्त कर सकते, तब तक बाह्य स्वतंत्रता भी सच्ची नहीं हो सकती है। तो आत्मा को माया रावण ने अधीन करके रखा है, और उसका परिणाम क्या हुआ है? चलो, अंग्रेजों ने हम पर अटैक किया, हमें गुलाम बनाया, और उसका परिणाम क्या हुआ, क्या परिणाम हुआ उसका, कि हम दुखी दयनीय स्थिति में आ गए। आज अगर माया रावण ने आत्मा को अधीन किया है, तो क्या हालत है? हम अपने आप से दूर हो गए हैं, हम अपने आप से दूर हो गए हैं। जब माया रावण का अटैक हमारे पर नहीं था, हम अपने आप के करीब थे। हम क्या थे? अपने आप के करीब थे। और जब माया रावण ने हमें पराधीन बना दिया, तो हम क्या हो गए? अपने आप से दूर हो गए। तो आध्यात्मिक संदर्भ में अगर आजादी चाहिए, तो कौन सी आजादी चाहिए? कि जो हम अपने आप से दूर हो गए हैं, इस दूरी को हमें हटाना है। तो क्या दूर हुए हैं हम अपने आप से? तो जैसे बाबा ने भी कहा कि हमारी यात्रा कहाँ से शुरू होती है, परम धाम घर से जब नीचे उतरते हैं हमारी यात्रा शुरू होती है। तो जब परम धाम घर से आए थे सिर्फ और सिर्फ एक चमकती हुई ज्योति के रूप में उतरे थे, मन भी उसके पास नहीं था। बाबा कहते हैं ना, परम धाम में जब आप बैठे होते हो आपको संकल्प भी नहीं होता है कि मैं बाबा के समीप हूं, मन भी नहीं है वहां, सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक चैतन्य ज्योति चमकती हुई। और नीचे आने के बाद ही मन बुद्धि और शरीर आदि सब कुछ उसे मिलता है। तो जब नीचे आती है आत्मा तो बाबा ने कहा शरीर धारण करती है और फिर आत्मा अपने नेचुरल सोल कॉन्शियस स्टेज में रहती है, अर्थात अपने करीब रहती है। सोल कॉन्शियस स्टेज में रहती है ना नेचुरल रीति से। अभी हम अभ्यास कर रहे हैं, जब शूद्र थे तो बॉडी कॉन्शियस थे, बाबा के बने तो समझ मिली कि सोल कॉन्शियस होकर जीना है। अब कितना जीते वो अलग बात है, समझ मिली और इसलिए समझ को हम प्रैक्टिकल कभी कर पाते हैं और कभी नहीं कर पाते, जिसको हम कहेंगे बॉडी कॉन्शियस और सोल कॉन्शियस के झूले में झूलते रहते हैं। वो बगीचे में जाते हैं ना, छोटे बच्चों का एक सी सा का गेम होता है, पट्टी होती है एक, नीचे और ऊपर ही होते रहता है। तो हम कहाँ नीचे ज्यादा जाते हैं कहाँ ऊपर ज्यादा जाते हैं हमें देखना होगा। हाँ, सोल कॉन्शियस ऊपर ज्यादा जाती है या बॉडी कॉन्शियस ज्यादा नीचे लेके जाती है, वो हमारा गेम चल रहा है अभी। लेकिन ये गेम खेलते खेलते बाबा कहते हैं कि एक्सपर्ट हो जाएंगे और सोल कॉन्शियसनेस टॉप पर जाएगी, माना 100% सोल कॉन्शियसनेस हमारी बनेगी। और उसके रिजल्ट रहेगी कि जब हम सत्युग में आएंगे तो हमें अटेंशन के साथ सोल कॉन्शियस नहीं रहना पड़ेगा, लेकिन वो हमारी नेचुरल स्टेज रहेगी। यहाँ नहीं है ना, जैसे ही यहाँ से स्पीकर गए कौन सी स्टेज में आ जाते हैं हम? हाँ, देख लिया ना, सी हम गीत बजने से जस्ट थोड़ा सा पहले आए और सारा सीन समझ में आ गया कि भट्टी में पहले दिन जो इतने सारे नियम बताए गए थे भट्टी की सफलता के लिए, वो कितने फॉलो हो रहे हैं, वो सीन उस चंद पलों में समझ में आ गया। और ये नियम क्यों दिए जाते हैं, बात आजादी की है। रावण का हमारे ऊपर वार कब हुआ? हम ऊपर से आए, सोल कॉन्शियस स्टेज हमारी 100% थी, लेकिन कैद थे किसमें? शरीर रूपी पिंजरे में। और इसलिए धीरे धीरे, क्योंकि इस शरीर की इंद्रियों से सब कुछ ग्रहण कर रहे थे ना हम, और जो ग्रहण किया, जो यहां से खाते तो इधर पेट है वहां जाता है, और यहां यहां से जब खाते हैं वो कहां जाता है, कहां जाता है वो? तो यहां से खाए का स्टोरेज इधर है, और यहां से यहां से यहां से जो खाते हैं उसका स्टोरेज किधर है? सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है ना सब कुछ। यहां से जो ग्रहण किया, जैसे भोजन की थाली मेरे सामने आई वो यहां थी, लेकिन मैंने हाथ से कौर उठाया और यहां डाला, तो ये अभी यहाँ पे है, लेकिन धीरे धीरे ऐसे ही जो यहां से ग्रहण कर रहे हैं, पहले कॉन्शियस माइंड में है, पहले कॉन्शियस माइंड में, और धीरे धीरे कहाँ चला जाएगा, सब कॉन्शियस माइंड में। और सब कॉन्शियस माइंड का दूसरा नाम क्या है, चित्त। और इसीलिए जैसे भोजन करते हैं तो जहां ये जाता है, आम भाषा में तो पेट बोलते हैं, लेकिन अगर आप स्कूल की किताबें पढ़ेंगे तो उसमें बोलते आमाशय, उसको क्या बोलते हैं, आमाशय, क्योंकि जो खाया उसमें जो सलाइवा मिक्स हुआ और वहां जाने के बाद जो उसमें एसिड आदि मिक्स हुए, तो अब वो भोजन नहीं, वो आम बन गया है साइंस की भाषा में। तो जहां आम ठहरा हुआ है उसको बोलते हैं आमाशय। ऐसे ही देखना भी कर्म था, सुनना भी कर्म था, सूंघना भी कर्म था, बोलना भी कर्म था, स्पर्श अनुभव करना वो भी कर्म था। ये सारे कर्म अंदर खींचते गए, फिर अंदर गया ना पूरा। तो जिस चित्त में जाते उसको दूसरा नाम दिया कर्माशय। उसको नाम क्या मिला, कर्माशय। इधर था, यहां खाया तो बोला आमाशय में गया, और उधर खाया तो बोला कर्माशय। अब यहां जो खाके डाला है, अगर इसमें जो डाला है वो मेरे शरीर के अनुकूल नहीं है, वो शरीर को लगता है कि ये कोई फॉरेन बॉडी है, तो शरीर क्या करेगा, उसको बाहर फेंकने की चेष्टा करेगा, उल्टी के माध्यम से, डायरिया के माध्यम से बेचैनी क्रिएट करेगा। कई बार ऐसा होता है ना, खाया और जो बेचैनी शुरू हुई, ऐसे लग रहा है उल्टी आएगी, अभी आई नहीं है पर लग रहा है, और जिस पल उल्टी कर लेते हैं, अभी ठीक है, बहुत अभी अच्छा लग रहा है, बोलते नहीं बोलते हैं। तो क्या हुआ इसमें, कि जो शरीर को नहीं चाहिए था लेकिन चला गया था, लेकिन जब वो निकल गया, मतलब जब उससे आजाद हुए, तो चैन मिला, क्योंकि फॉरेन बॉडी कुछ गई थी, मतलब जो मेरे शरीर के लिए उपयुक्त तो नहीं है वो कुछ चला गया। ऐसे ही हम सतयुग में इंद्रियों के माध्यम से बहुत कुछ अंदर लेते गए, लेकिन चूंकि सोल कॉन्शियस में थे, तो कोई भी कर्म, चाहे देखने का था, चाहे सुनने का था, चाहे बोलने का था, चाहे स्पर्श करने का था, वो गलत नहीं था। और इसीलिए तो कहा, हर इंद्रिय के साथ कमल शब्द जोड़ दिया, कमल नयन, चरण कमल, हस्त कमल, मुख कमल, कि कर्म किया इन इंद्रियों से, पर सोल कॉन्शियस में थे इसलिए वो कुछ भी गलत नहीं था। और सोल कॉन्शियस में थे माना क्या, ये हमें थोड़ा धीरे धीरे सिंप्लीफाई करना होगा, तब जाके जीवन में परिवर्तन आता है। नहीं तो शब्दों को सिर्फ रट लेते हैं तो प्रैक्टिकल में करना क्या है वो समझ में नहीं आता है। अब सोल कॉन्शियस बोल दिया, सोल कॉन्शियस में थे, मतलब क्या था सोल कॉन्शियस में, सोल को ये तो अंग्रेजी शब्द है, बाबा कहते आत्म अभिमानी है ना, आत्म अभिमानी स्थिति, आत्मा का स्वरूप क्या है, सत चित आनंद। सत माना क्या, चित माना क्या, आनंद माना क्या, सत माना क्या बोलो, सत्य आइडेंटिटी में रहना, सत माना ही जो तीनों कालों में कायम रहेगा, अविनाशी। यही बोलते ना पहले दिन के लेसन में, ये शरीर असत है। क्यों? क्योंकि कल नहीं था, आज है, कल नहीं रहेगा। जिस दिन कहा बच्चे का जन्म हो उस दिन शरीर आया ना, उसके पहले कहाँ था? और जिस दिन कहा कि फलाना जिसका जन्म इस तारीख को हुआ था, इस तारीख को उसकी मृत्यु होगी, तो उसके बाद वो शरीर कहाँ आया? अभी तब कहने में आया शॉर्ट में, कल नहीं था आज है, कल नहीं रहेगा। लेकिन आत्मा उससे पहले भी थी, उस शरीर में भी थी, शरीर छूटने के बाद भी रहेगी, उसको कहते हैं सत। यही बताते हो ना पहले दिन के लेसन में। और दूसरा है चित्त। चित्त माना, पहले चित्त हम बोलकर आए हैं, वो दूसरा चित्त है जहां स्टोरेज हो रहा है। और ये वाला चित्त कौन सा है? कॉन्शियसनेस तो अंग्रेजी उसका ट्रांसलेशन है, उसका सिंप्लीफिकेशन। चैतन्यता, चैतन्यता का सिंप्लीफिकेशन, जागृति का सिंप्लीफिकेशन, हाँ, लिविंग का सिंप्लीफिकेशन, ज्ञान है। ज्ञान है ना, उस चैतन्य माना ही ज्ञान है ना। तभी बाबा कहते हैं ना, मैं चैतन्य बीज हूं, मुझे ज्ञान है। वो आम का बीज आप बोएंगे, उसको ज्ञान है क्या? मैं आम का बीज हूं और मेरे अंदर ये इतना बड़ा वृक्ष समाया हुआ है, उसको नहीं पता कुछ भी, वो जड़ है। लेकिन शिव बाबा वो भी कल्प वृक्ष का बीज ही है, लेकिन चैतन्य उसको पूरा ज्ञान है। और इसीलिए वो ज्ञान हमें आके सुनाता है, अवेयरनेस है उसको सारी। और फिर तीसरा, तो जो भी सत्य चित आनंद में, सत्य माना जो कायम रहे तीनों कालों में, चित माना जो चैतन्य है, जो अवेयर है, जो होश में है, जिसे ज्ञान है। और आनंद माना ब्लिस, ब्लिस माना ये अंग्रेजी ट्रांसलेशन है। हाँ, जो सुख और दुख से भी परे, सुख और दुख इंद्रियों के संबंध में है, मन के संबंध में है। जैसे कहा ना, आत्मा ऊपर से आई तो मन के साथ नहीं उतरी है, मन परमधाम में मन नहीं होता है, आत्मा की स्थिति की बात चल रही है। तो सुख दुख मन अनुभव करता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, आप जैसा सोचेंगे वैसे आपकी स्थिति बन जाएगी। अगर आपका सीन देखे मुझे रोष आ जाए, अरे मैंने इनको क्या डायरेक्शन दिया था, कर क्या रहे हैं, तो मेरा मन एक अलग प्रकार के भाव से भर गया और अलग फीलिंग आई। मैंने साक्षी होकर देखा कि ये फरिश्ते कर क्या रहे हैं, ये कौन से फरिश्ते, टॉकी फरिश्ते। तो मेरी स्थिति अलग रही। तो सब कुछ किस पर डिपेंड कर रहा है? मन पर। लेकिन जब हम कहते अतिंद्रिय सुख, इंद्रियों से भी परे, तो मन भी क्या है, इंद्रिय है या नहीं है? ये शरीर वाली इंद्रियां स्थूल इंद्रियां है, और मन बुद्धि ये क्या है, सूक्ष्म इंद्रियां है। तो इंद्रियां ना, तो इंद्रियों से परे जो स्थिति रहती है वो है आनंद। कि जिस आनंद में फिर करुणा बहती है। इसीलिए देखो, जो भी लोग अध्यात्म के क्षेत्र में बोध को प्राप्त हुए, हाँ, स्कूल में पढ़ाई की ना, महावीर के बारे में बताया, बुद्ध के बारे में बताया कि इनको एनलाइटनमेंट हुआ, आत्मबोध हुआ। आत्मबोध होने के बाद करुणा जागी कि सबको ऐसा आत्मबोध हो, जाके मैं उनको 이 사라 얀 수남 이 교인산 두키해 인산 고 깨세 कर्म करना चाहिए क्या पाप होता है क्या पुण्य आत्मबोध हुआ मतलब ये सब उनको पता चला और उससे ऊपर उठते 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 अपने असली स्वरूप में क्योंकि अंदर में किया क्या उन्होंने जो आत्मा के ऊपर जो परते चढ़ी हुई है वो परते उनकी भीतर जो ध्यान में बैठे थे डाइल्यूट करते गए डाइल्यूट करते गए डाइल्यूट करते गए और वो निराकार आत्मा ज्योति स्वरूप का दर्शन हुआ कि अल्टीमेट सत्य ये है कि आत्मा अपने आप में आनंद स्वरूप है आत्मा दुख नहीं है आत्मा सुख नहीं है ये तो जो हम धरती पर इस शरीर के माध्यम से कर्म कर रहे हैं उसके कारण से वो कर्म फल फिर वो कर्म चाहे पाप का हो चाहे पुण्य का हो तो जिस प्रकार का कर्म उस प्रकार का फल पाप का कर्म है तो पाप का फल आएगा जो दुख ही करता है पुण्य का कर्म है तो पुण्य का फल आता है जिससे खुशी मिलती है लेकिन अपने असली स्वरूप को वो वाला स्वरूप जो हम परमधाम से उतरे थे वो वाला स्वरूप अब हमारे भीतर कितनी करुणा जागती है हमारे भीतर कितनी अवेयरनेस रहती है हमारे भीतर हम सत्य को कितना प्रायोरिटी देते हैं उस आधार से हम समझेंगे कि हमारी सत चित आनंद वाली स्थिति है या नहीं तो जैसे कहा सत पहले ही कहा जो तीनों कालों में कायम रहे जीवन में जब भी कोई बात आएगी उस बात कहो व्यक्ति कहो वस्तु कहो वाक्यात कहो जो भी आएगा मैं उसको टैकल करने के लिए किसको इम्पोर्टेंस देती हूँ क्षणिक को या शाश्वत को क्योंकि सत्य की परिभाषा जो सदा कायम रहे शाश्वत रहे इटर्नल रहे और असत्य माना जो टेम्पररी है वो टेम्पररी एक सेकेंड भी हो सकता है एक मिनट भी हो सकता है एक घंटा भी हो सकता है एक दिन भी हो सकता है एक हफ्ता भी हो सकता है एक महीना भी हो सकता है एक साल भी हो सकता है और एक 100 वर्ष भी हो सकते हैं पर टेम्पररी ना वो तो मैं जब कोई भी मेरे जीवन में बात आ रही है वहां पर मेरा जो भी सिचुएशन को टैकल करने का तरीका होता है जो निर्णय लेती हूँ उसका बेस क्या होता है शाश्वत या क्षणिक तभी तो बाबा के सोल कॉन्शियस जीना वाना क्या होता है क्योंकि डेफिनेशन है सत चित आनंद कि चित्त में अवेयरनेस में होश अगर सत्य का है तो जीवन में आनंद की अनुभूति होती रहेगी लेकिन अगर चित्त में अवेयरनेस में होश में सत्य नहीं है तो भूल जाओ कि जीवन में आनंद होगा तो ये जो आजादी की बात है किससे आजादी बेहोशी से आजादी क्षणिकता से आजादी हम क्या देखते हैं कि अभी अभी क्या मुझे इसके रिजल्ट मिलेगी उदाहरण के लिए कई कभी नहीं खाज हो जाती है ना कुछ फोड़ा फुंसी हो जाता है और सबको नॉलेज है कि वो खुजलाहट जैसा अनुभव होता है कि उसमें खुजला दूं और खुजलाऊंगी तो थोड़ा सा मुझे लेकिन खुजलाने के बाद क्या होने वाला है वो भी पता है खुजलाने के बाद क्या होने वाला, फिर क्या बोलते हैं, कितना मना किया था मत खुजलाओ मत खुजलाओ, तुमने खुजला के उसको क्या कर दिया, बढ़ा कर दिया, बोलते हैं तो। लेकिन वो क्षणिक सुख लेने के पीछे भागी मैं उस क्षणिक सुख लेने के पीछे भागी और उसके पीछे बहुत बड़ा दुख झेला। ये तो एक शरीर का एक उदाहरण दिया। ऐसे व्यवहार में जब किसी से कुछ गलती हो गई, क्षणिक सुख के नाम पर मैं आपको डांट लगा सकती थी, ये क्या चल रहा है, आपको क्या दे दिया गया था, कौन से नियम बताए गए थे आपको, भट्टी करने आए हो क्या करने आए हो, मैं डरा सकती थी ना डांट। लेकिन हमने वो काम नहीं किया, क्षणिक है वो। और डांट से कौन सा असर होने वाला है, हाँ जो प्रेम से होगा वो डांट से नहीं हो सकता है। तो जो कहा न कि आजादी किससे, और ये क्यों आप इतना वाचा में आ गए, क्या जानबूझकर कर रहे थे आप, बिल्कुल भी नहीं, जानबूझ के किसी ने भी नहीं किया। हमारी आदत है वर्षों की बोलने की, और अचानक से किसी ने कह दिया तीन दिन आपको बोलना ही नहीं है, कितना बड़ा पीरियड है तीन दिन, तो कहने का तात्पर्य आजादी किससे चाहिए, ये जो हमारी गलत आदतें पड़ गई है, ये जो हमारी मिथ्या मान्यताएं सेट करके रख ली है, उनको डांट लगाया होता ना आपने तो ठीक हो गए होते, आप डांट वांट कुछ लगाती नहीं हो, उनको कोई असर नहीं होता है, आप तो बड़े प्रेम से जाके बोल देती हो। हाँ तो ये मान्यताएं जो गलत वाली हमने सेट की है ना, कि कल डांट लगाने से ही ठीक होगा, ये करने से, ये सारी जितनी भी गलत मान्यताएं, गलत आदतें, मैं मेरापन अपने भीतर भरा पड़ा है, आजादी चाहिए उससे। क्योंकि आत्मा अपने आप में सच्चित आनंद है, लेकिन उसके ऊपर अननेसेसरी चीजों की बंधन लेप चढ़ गए हैं। तब कहा जब आध्यात्मिकता के संदर्भ में देखें कि अगर मुझे आजादी चाहिए तो किससे आजादी चाहिए, कि अपनी ही दो युगों तक मैं सोल कॉन्शियस थी, माना अवेयरनेस में थी कि मैं आत्मा और आत्मा का, फिर वो आनंद बिखेर रही थी, उस आनंद की स्थिति में थी, भरी हुई थी, बैटरी चार्ज थी, तो प्रैक्टिकल जीवन में उसका परिणाम क्या आ रहा था। जैसे देखो स्कूल में जब पढ़ाई करते थे हम, तो एक सब्जेक्ट होता था ड्राइंग, और ड्राइंग करते थे छोटी मोटी, एक एप्पल बना दो, आम बना दो, हाँ पत्ती सहित, फिर उसमें कलर भरो। तो कलर का जब ज्ञान दिया गया तो बताया कि प्राइमरी कलर सिर्फ तीन होते हैं, कौन कौन से, लाल पीला, हाँ जो भी आपको पता है, ठीक है ना। लेकिन उन तीन कलर को अलग अलग मात्रा में आप मिलाते चले जाएंगे, एक वैरायटी सेकेंडरी कलर्स की तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर वो प्राइमरी तीन ही आपके पास नहीं हो तो फिर किसको मिलाने जाओगे और कहां से वैरायटी तैयार करने जाओगे, समझ में आ रही बात। तो ऐसे ही जब हम सोल कॉन्शियस में होने के कारण आनंद वाली स्थिति में थे, तो प्रैक्टिकल में जब हम एक दूसरे के साथ संपर्क संबंध में आ रहे थे, तो सेकेंडरी कलर्स जिसको कहा कि जिसको मन अनुभव, फिर कहा ना कि सुख दुख मन अनुभव करता है, तो ये जो आत्मा के ओरिजिनल फिर सात संस्कार जो बता दिए, वो हम एक दूसरे के साथ व्यवहार में, संबंध में, संपर्क में रेडिएट कर रहे थे। इसलिए हर कर्म भले इंद्रियों के माध्यम से हुआ पर गलत कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन दो युग आते आते, क्योंकि सोल कॉन्शियस स्टेज नेचुरल थी, अभ्यास नहीं था, साइकिल का पैदल चलाया चलाया फिर छोड़ दिया, तो चल रहा है ना। लेकिन जब चल रहा है छोड़ दिया तो अभी पैर तो हम नहीं घुमा रहे, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, रुकेगा। तो वो जो नेचुरल सोल कॉन्शियस स्टेज थी, दो युगों के बाद आके क्या हो गई, रुक गई। और तब जाके हम बॉडी कॉन्शियस में आए, तब बाबा कहते राम राज्य में रावण की प्रवेशता हो गई, बॉडी कॉन्शियसनेस में तुम आ गए, देह अभिमानी तुम बन गए। तो जब तुम आत्माभिमानी थे, वो एक जिसको कहते ना अद्वैत में थे, द्वैत भावना नहीं थी कि ये सबको पता था, हम सब एक्टर्स हैं, सबको अलग अलग पार्ट मिला हुआ है। लेकिन जहां हमको देह अभिमान आ गया, वो अद्वैत पना भी भूल गए, द्वैत में आ गए, मैं अलग वो अलग। और जब वो अलग और मैं अलग, तो मेरी सारी कोशिश, मैं सबसे ऊंचा, बाकी सब, इसको ही तो कहा ना अभिमान। हाँ, अभिमान की यही परिभाषा है। और क्या परिभाषा अभिमान की, कि दूसरे को दुख पहुंचा के, दूसरे को हर्ट करके, दूसरे की निंदा करके, दूसरे की ग्लानि करके, दूसरे को दुख पहुंचा के भूल जाना, मैंने क्या किया था, मैंने तो कुछ नहीं किया था। पता नहीं आप क्या क्या याद रखते हो, पता नहीं कितना पुराना याद रखते हो आप, बोलते हैं फिर से, ये है अभिमान। दूसरे को दुख भी पहुंचाया और फिर बोले मैंने तो कुछ किया नहीं, पता नहीं तुम क्या बातें याद करते रहते हो। तो यही हुआ वहां पे, क्योंकि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित करने की कोशिश में हमने बहुत कुछ दूसरों के साथ किया, और वो हमारे बाबा ने कहा वहां से तुम्हारे पाप कर्म चालू हो गए। तो सिर्फ पाप नहीं किए, वैरायटी है, कुछ दोष हुए, कुछ अपराध हुए, कुछ त्रुटियां हुई, कुछ पाप हुए, कैटेगरीज है इन सब की। कई बार नहीं, किसी को कोई सजा देते तो पूछते हैं, छोटी सी तो मिस्टेक हुई, कौन सा मैंने बड़ा पाप कर लिया जो मुझे इतनी बड़ी पनिशमेंट दी जा रही। तो अंतर होता है ना, एक छोटी मिस्टेक होना, पाप होना, इनमें अंतर होता है। तो सिंपल परिभाषा जो हम कहेंगे कि जो भी चीज मुझे अपनी सत चित आनंद की स्थिति से दूर लेके जा रही है, वो सब है देह अभिमान। और वो सारे कर्म या सोच या व्यवहार जो मुझे अपने आत्म अभिमानी स्थिति के निकट लेके जा रही है, वो है श्रेष्ठ कर्म, वो है पुण्य कर्म। क्योंकि भले वहां पे सतयुग में हम अभ्यास नहीं कर रहे थे सोल कॉन्शियस का, लेकिन नेचुरल होने के कारण अपने आप के निकट ही तो थे ना, सच्चित आनंद वाली स्थिति में ही तो थे ना। और इसीलिए कहा कि वहां पे हमारा क्या है, न पाप बनता है पुण्य बनता है, हमारे कर्म क्या है, अकर्म हो जाते। परंतु द्वापर से क्या हो रहा है, तो उसकी परते 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 पर कर्माशय बढ़ता गया। और कर्माशय, जैसे ये आमाशय में अगर राइट वाली चीज नहीं गई तो डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, और डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है तो इजेक्शन भी प्रॉपर नहीं होता है, और इजेक्शन प्रॉपर नहीं होता तो कहीं ना कहीं वो शरीर में जमा होता रहता है और शरीर मोटा होता रहता है। इसलिए बाबा भी कहते हैं ना कि दुनिया में भी क्या कहते हैं, मोटापा हटाने की कोशिश की जाती है, तो यहाँ पे भी कितना मोटापा आ गया है। हाँ, जैसे देखो एक वो होती है ना गिफ्ट, गिफ्ट वैल्यूएबल अंदर रहेगी, लेकिन किसी को थोड़ा हमको उसके साथ खेल खेलना होता है तो क्या करते हैं वेपर के ऊपर वेपर, वेपर के ऊपर वेपर, वेपर के ऊपर वेपर, अंदर गए तो ऐसे कितना होती, छोटी सी गिफ्ट है लेकिन वेपर वेपर बांध के अभी आत्मा भी इतनी मोटी हो गई। वास्तव में वो सूक्ष्म है लेकिन उसके ऊपर लेयर्स 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 लेयर्स, कि जिस लेयर्स के अंदर वो ओरिजिनल चीज का अता पता बिल्कुल नहीं, उस ओरिजिनल चीज की झलक भी बाहर रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। तो आजादी किससे, जो आत्मा के ऊपर इतनी सारी लेयर्स द्वापर युग से चढ़ती आई है चढ़ती आई है, उन लेयर्स को उतारेंगे तब जाके सचमुच में हम आजाद होंगे। अब उसको कैसे उतारें, पहले तो ये समझ में आया कि आजादी हमें किससे चाहिए, अब कैसे लाएं, कैसे लाएं आजादी। तो वो कहानी बताते हैं कि एक तोता, सुनी हुई होगी सभी की ये कहानी, कि पिंजरे में कैद था, एक सेठ जी के घर में पिंजरे में कैद था। तो सेठ जी गुरु के पास यात्रा करने के लिए कुछ दिनों के लिए जा रहे थे और तोता बोलने वाला था, तो तोते ने कहा कि मालिक आप गुरु जी के पास जा रहे हैं तो मेरा भी संदेश पहुंचा देना गुरु जी को कि मैं वर्षों से पिंजरे में कैद हूं, बस मेरा ये संदेश उन तक पहुंचा देना। तो उसके मालिक सेठ जी गए यात्रा पर, काफी दिन जो भी उसके मुकरर थे वो करके वापस आए। वापस आए तो तोते ने पूछा, मेरा संदेश गुरु जी को आपने दिया? कहा, लेकिन आपका संदेश मैंने जैसे ही गुरु जी को दिया, गुरु जी ने तो आंखें मूंद ली, समाधिस्थ अवस्था में चले गए और रिटर्न में मुझे कुछ भी संदेश नहीं दिया आपके लिए। तोता समझ गया बात को। तोता जो उस पिंजरे में खड़ा था बैठा था जो भी था तुरंत गिर गया। मालिक ने सोचा कि शायद इसको सदमा पहुंचा है कि गुरु ने मेरे संदेश की कोई वैल्यू नहीं की और उस सदमे में ये ऐसे गिर गया, और देखा तो उसने हिलना डुलना भी बंद कर दिया था, तो उसको लगा इसको सिर्फ सदमा नहीं पहुंचा है, सदमे में इसके प्राण पखेरु भी उड़ गए हैं। अब मरे हुए को पिंजरे में क्या रखूंगा, दरवाजा खोला। समझ गए आप, तो फुर्र करके उड़ गया। मालिक देखते रह गया, ये किया तुमने, मैंने तो सोचा तुम्हें, कहा आपने ही तो संदेश लाया ना गुरुजी का, कि गुरुजी का यही संदेश था समाधिस्थ हो जाओ, अर्थात बाहर की दुनिया से बिल्कुल अपने आप को मरा हुआ समझ लो, भीतर की दुनिया में जीना आरंभ कर। तो मैं भीतर चला गया, तो आपने मुझे मुक्त कर दिया, मुझे आजादी मिल गई। ये है सच्ची आजादी। और इसीलिए भक्ति मिली थी कि बाहर की दुनिया से थोड़े दिन के लिए अपने आप को अलग कर लो। घरों में रहते, सेंटरों पे रहते, कुछ ना कुछ जिम्मेवारियां होती ही है। हम थोड़ा समय के लिए सोचे भी कि चलो आज मैं मुरली अमृत वेला से मुरली तक मौन रखूंगा, कोई ना कोई घर में बोलेगा, याद करेगा, फोन आएगी, तो बहन जी हम बहुत सोचते हैं पर कुछ ना कुछ आ जाता है। हाँ, लेकिन बाबा ने फिर अवसर दिया आपको। हाँ, तो देखो कितना लाभ उठाया आपने इस अवसर का। तो समाधिस्थ अवस्था में चले जाने का मतलब क्या? गुरु चला गया समाधि में, और वो उड़ के अपने तोते जो दूसरे होते हैं उनके साथ मिल गया। तो हमें भी क्या करना था, क्या लक्ष्य है भट्टी का? बाप समान बनना है, संपन्न और संपूर्ण बनना है। क्योंकि क्यों वो चाहता था आजाद होना? क्योंकि वो जब भी कभी देखता था अपने जात के तोतों को उड़ता हुआ, तो उनको देखकर उसको लगता था कितना स्वच्छंद रीति से, मुक्त रीति से खुले गगन में उड़ के आनंद उठा रहे, और मैं वर्षों से इसमें बैठा हुआ हूँ। हम भी यही कह रहे ना बाबा, बाबा आप जैसे बनना है, आप जैसे बनना है। लेकिन बाबा जिम्मेवारियां इतनी रहती है, कैसे करें? तो बाबा ने चांस दिया, आ जाओ बच्चे, मधुबन बेहद घर में हर प्रकार की जिम्मेवारी से मैं तुमको मुक्त रखूंगा। सिर्फ एक जिम्मेवारी रहेगी कि बाहर की दुनिया से मुक्त रहो, भीतर की दुनिया में काम करो। क्या भीतर की दुनिया में काम करो? वो देखो, पढ़ते देखो क्या दोष अंदर में है, क्या कमियां अंदर में है, और वो स्वीकार करो, उसका इकरार करो, उसका पश्चाताप करो, उसका प्रायश्चित करो। बदले में, उसके बदले में अच्छे गुण को धारण करने की प्रतिज्ञा करो। क्यों कहा गया चार धाम की यात्रा और बाबा को पत्र लिखना? क्या जरूरत पड़ी है बाबा को पत्र लिखने की? पत्र लिखने का सीधा मीनिंग ये है कि जो बात अंदर दबी पड़ी है सबकॉन्शियस माइंड में, उसको कॉन्शियस माइंड में लेकर आओ। कॉन्शियस माइंड में देखो, किसी चीज में कोई चीज जब गिर जाती है ना, जैसे आपने भोजन बनाया, ठीक है, थी कोई मीठी चीज है लेकिन उसमें नींबू का छिलका गिर गया, अब क्या करेंगे? पड़े रहने देंगे? फटाफट अंदर से बाहर आना चाहिए, नहीं मिल रहा है, हाथ नहीं लग रहा है, फटाफट छन्नी उठाएंगे और कॉन्शियस माना सरफेस लेवल पर उसको लाने की कोशिश करेंगे, तब उस मिठास में उसका ज्यादा कुछ नहीं पड़ेगा, नहीं तो उसको बिगाड़ देगा। तो ये उसको जो कुछ भी कमियां है वो अंदर और बिगाड़ करेगी। जैसे पत्थरी होती है ना, तो अचानक अचानक क्या होता है, उसका दर्द उठता है। तो दो तरीके होते हैं, एक तरीका कि गलाने का मेडिसिन, और दूसरा ऑपरेशन करके उसको निकाल ही दो। गलाया माना भी निकाल ही रहे हैं, मतलब उसका स्थान वहां नहीं होना चाहिए, उसको निकालो किसी भी तरीके से। तो पत्र लिखने का यही मतलब होता है, जिसको कहा इकरार। एक है स्वीकार कि मैंने भीतर ही भीतर स्वीकार किया कि हाँ मेरे में ये कमी कमजोरी है, कि मैं किसी को आगे बढ़ता देखती हूँ, मुझे ईर्ष्या हो जाती, होनी नहीं चाहिए, पर ये मैंने स्वीकार किया। स्वीकार करके फिर इकरार करना। इकरार का मतलब क्या होता है? हाँ, माना अपने से जो हायर है उसके सामने स्वीकार करना। ये तो मन ही मन स्वीकार किया ना, जो सिर्फ मुझे ही पता है, लेकिन हमारे से जो हायर है उनके सामने जाके स्वीकार करना। जब उनके सामने जाके स्वीकार करते हैं, देखो बचपन में भी माँ बाप क्या बोलते, छोटे छोटे बच्चे गलतियां करते रहते हैं और झूठ बोलते भी रहते हैं और छुपाते रहते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा, हमने अपने जीवन में, हम भी छोटे रहे ना आखिर, ऐसे सीधे बड़े तो नहीं हुए ना। तो माँ कई बार क्या पूछती है, माँ को कहीं और से पता चलता है, बेटा तूने ऐसे किया, नहीं तो सच्ची सच्ची बता, मैं तेरे को डांटूंगी नहीं, कुछ भी नहीं करूंगी। क्योंकि उसको पता है माँ को डांट के डर से, मार खाने के डर से, तो वो निश्चिंत कर देती है। क्यों? माँ चाहती है कि ये वाली आदत, भले आज इसने इसे कर लिया है, पर इसकी लंबे काल की आदत नहीं बननी चाहिए, इसको मैं अभी ही अलर्ट कर दूं। पर ये पहले सच तो बोले, पर सच क्यों नहीं बोल रहा है? डांट पड़ेगी, और इसलिए माँ फिर उसको क्या कर देती है, कॉन्फिडेंस में लेती, बेटा मैं बिल्कुल तेरे को कुछ नहीं बोलने वाली हूँ, मैं बिल्कुल नहीं डांटूंगी, बिल्कुल नहीं मारूंगी, बस तू एक बार मुझे सच्ची बात बता दे। और जब बेटा इतना आश्वस्त हो जाता है कि माँ मुझे कुछ नहीं करने वाली है, तो सच उगल देता है, और फिर माँ आगे के लिए उसको हिंट देती है, सपोर्ट करती है कि बेटा ऐसा आगे नहीं करना, और उसको अपनी पावर गले लगा के, कहते ना बच्चे को कैसे पता चलता है, हम बोलते हैं बच्चा छोटा जब गोदी में लो ना आप, सोता है और बस उसको नीचे उतारो ऐ करना शुरू कर देगा। हम बोलते हैं उसको कितनी देर, उसको पता कैसे चलता है कि गोद में है कि नीचे है, लेकिन वो माँ का प्यार भी तो उसको मिल रहा है ना। तो ऐसे ही जब हम किसी को बताते हैं, उसकी वो ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा हमको मिलती है, कि जो ऊर्जा मुझे मदद करती है, उस जो भी गलती मेरे से हुई है, जो भी मेरे कमी हुई है, मैंने उसके सामने इकरार कर लिया है, तो अब वो उसकी ऊर्जा मुझे मदद करेगी, मैं इसको अपने आप से अलग रख सकूं। तो यही कहा था कि आपको एकांत का समय दिया जा रहा है, एकांत में बैठ के भीतर का दर्शन, स्वदर्शन करना है, दूसरों का दर्शन नहीं, स्वयं का दर्शन। जब स्वयं का दर्शन करेंगे, दिखाई पड़ेगा ये पड़ते हैं, उसको स्वीकार करेंगे, इकरार करेंगे, उसके साथ बाबा को याद करेंगे, तो बाबा की मदद मिलेगी और आत्मा शुद्ध हो जाएगी। अर्थात यही तो पिंजरा है, और कौन सा पिंजरा है आत्मा के लिए, तो आत्मा क्या हो जाएगी, आजाद हो जाएगी। बल्ब देखा है ना, बल्ब अंदर में फिलामेंट होता है, जब आप स्विच ऑन करो तो जलता क्या है, कांच जलता है या फिलामेंट जलता है, फिलामेंट जलता है, लेकिन उसके ऊपर कांच है, कांच ट्रांसपेरेंट है, प्रकाश का स्वभाव है गमन करना, तो वो गमन करता है, रास्ते में कांच मिलता है, लेकिन ट्रांसपेरेंट है तो उसको भेद के बाहर आता है। लेकिन अगर हमने सफाई का ध्यान नहीं रखा, हम बल्ब ऐसी जगह पे लगा है जहाँ पे बहुत ट्रैफिक आता जाता है, या किचन में ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पे मस्त छींक छोंक लगते हैं, सीटियां बजती है, पकोड़े तले जाते हैं, तो उसके ऊपर क्या हो जाता है, और हमने ध्यान नहीं दिया, महीनों बीत गए, उसका प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश तो अभी भी मौजूद है वहां पे, लेकिन बाहर नहीं आ रहा है। तो वो प्रकाश पाने के लिए उस बल्ब को, उस फिलामेंट को किससे आजाद करना पड़ेगा, जो कांच के ऊपर इतनी सारी लेयर्स पड़ी है। तो ये झांकेंगे तभी ना, बल्ब तो रोज ध्यान ही नहीं देते थे, जब अंधेरा हुआ तब पता चला, अरे दूसरे कमरे में जल रहा है, यहाँ क्या हो गया, लाओ मैं उतार के देखता हूँ, जैसे ही चढ़ा हाथ लगाया तो हे ये क्या है। तब पता चला कि बल्ब में खराबी नहीं है, मेरे तरफ से असावधानी है। तो ये एकांत में बैठने से ऐसे पता चलता है। तो आपको एकांत मिला था, मौन धारण करने की आपको बहुत सारी, पहले दिन पूरा पूरा एक घंटा आपके साथ बैठे थे हम। हाँ, हम समझते हैं कि मधुबन में बहुत समय के बाद आते हैं और आपस में शायद ऐसे कभी मिलते भी नहीं है ना, तो थोड़ा लगता है यही तो समय है मिलने का। कोई बात नहीं, सब कुछ माफ। लेकिन एक संकल्प करके जरूर जाना कि भीतर के दर्शन के लिए जीवन में मौन को स्थान देना है, एकांत को स्थान देना है। तभी तो समाधि की अवस्था बनेगी, नहीं तो कैसे बनेगी? संदेश कैसे भेजा था तोते को? क्या किया था गुरुजी ने? आंखें मूंद ली, समाधि में चले गए। भीतर जाओ, भीतर जब तक जाएंगे नहीं मुक्ति संभव नहीं है, आजादी संभव नहीं है। और जब तक आजादी संभव नहीं, मुक्ति संभव नहीं, वो सत्चित आनंद वाली स्थिति बनेगी नहीं, वो करुणा बहेगी नहीं जो दूसरों का कल्याण कर सके। और जबकि बाबा रात दिन एक ही बात कह रहे हैं, देही अभिमानी बनो, नष्टो मोहा बनो, सबका कल्याण करो, एक ही बात कह रहे हैं। सारी मुरलियों का सार यही है। गीता सुना दी 18वें अध्याय में आके, जब तक ये नहीं रियलाइज किया कि मोह को नष्ट करना है और कर दिया है, गीता चलती रहेगी। तभी कहा कोर्स तो पूरा हो गया लेकिन अब उसी की गुट्टी बनानी है, नया कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ, तो ये पक्का करके जाना यहाँ से कि एकांत को, मौन को जीवन में स्थान दे, भीतर जाके टटोले, स्वीकार करे, इकरार करे, पश्चाताप, नाम ही पश्चाताप, कि गलती हो गई है, उसके पश्चात भी अगर मैं समझ गया कि मेरे से गलती, पश्चाताप, पश्चात प्लस ताप, कि उसको फील करो कि हाँ मेरे से गलती हुई है, प्रायश्चित, अपने आप को उसके लिए छोटी मोटी कोई पनिशमेंट, जैसे बाबा कैसे पनिशमेंट देते थे, आज तुम्हारा पापड़ बंद। हाँ, ऐसी छोटी मोटी, क्योंकि याद रहे कि मेरे से कुछ हुआ है और उसको मुझे मिटाना है, और बदले में कोई एक नया, जो गलत कर रहे थे उसके बदले अच्छा करने का भीतर में संकल्प। तब सही अर्थों में हमारी आत्मा की भी आजादी का हम क्या मनाएंगे? महोत्सव मनाएंगे। और महोत्सव मनाते मनाते बाबा के साथ, बाबा के पलकों में बैठकर परम धाम घर जाएंगे और नई सतयुगी दुनिया में आएंगे। ओम शांति।
में रहता तुम बिन, ओ मेरे इसमें तू ही तो बसता तू